चालीसवें पद का गुप्त इतिहास संख्या 13।
संख्या 13।
144,000 का एक प्रमुख प्रतीक होने के नाते पतरस 2026 में पानियम में खड़ा है और 18 जुलाई 2020 की झूठी भविष्यवाणी को सुधारने का कार्य कर रहा है। इस संबंध में उसका कार्य अगस्त 11, 1840 के विषय में योशिया लिच के सुधारात्मक कार्य तथा अक्टूबर 22, 1844 की शमुएल स्नो द्वारा की गई पहचान के कार्य के साथ समन्वय रखता है। लिच के सुधार ने पहले स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान की और स्नो के कार्य ने दूसरे स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान की। पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों का ये सामर्थ्य प्रदान तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के सामर्थ्य प्रदान का प्रतिरूप है। पहले और दूसरे की विशेषताएं तीसरे में एक संयोजन के रूप में प्रस्तुत होती हैं। एक बाहरी हाय संदेश तथा 10 कुंवारियों के दृष्टांत की मध्य रात्रि की पुकार के आंतरिक संदेश के रूप में
भविष्यवाणी के त्रिगुणित अनुप्रयोग में पहला और तीसरा, जो आरंभ और अंत भी हैं, समांतर विशेषताओं के धारक होंगे। हाल ही में एक भाई ने प्रकाशित वाक्य 9 के प्रथम हाय से संबंधित अनेक सत्यों का उद्घाटन किया है, जो अल्फा और ओमेगा के सिद्धांत के अधीन लागू किए जाने पर प्रकाशित वाक्य 11 के भूकंप की एक और गहन पुष्टि की पहचान कराते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार का कानून वही भूकंप है जो पहले फ्रांसीसी क्रांति में पूरा हुआ था, जब फ्रांस, जो दानियल की पुस्तक में मूर्ति पूजक रोम की भविष्यवाणीगत संरचना को बनाने वाले 10 राष्ट्रों में से एक भाग था, परास्त कर दिया गया। इस प्रकार अध्याय 11 कहता है कि नगर का दशमांश भाग गिर पड़ा
और उसी घड़ी वहां एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप में 7,000 मनुष्य मारे गए और शेष लोग भयभीत हो गए और उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। प्रकाशित वाक्य 11:13।
इस पद के तुरंत पश्चात तीसरे हाय का इस्लाम आता है।
दूसरा हाय बीत गया और देखो तीसरा हाय शीघ्र आता है। प्रकाशित वाक्य 11:14।
अग्रदूतों ने ये अपेक्षा की थी कि तीसरा हाय दूसरे हाय के तुरंत पश्चात आएगा, परंतु जिस शब्द का अनुवाद शीघ्र किया गया है उसका अर्थ है अचानक और अप्रत्याशित रूप से, जो इस्लाम के आकस्मिक आक्रमणों की विशेषता है। तीसरा हाय 22 अक्टूबर 1894 को, जैसा कि अग्रदूतों ने अनुमान किया था, आने वाला नहीं था, किंतु जब वो आता तो वो अचानक और अप्रत्याशित रूप से घटित होता, जैसा कि 9/1 में हुआ। इस प्रकार 144,000 के मुद्रांकन के आरंभ को चिन्हित करता हुआ, जो रविवार के विधान के भूकंप से कुछ ही पहले समाप्त होता है।
रविवार व्यवस्था का भूकंप, पृथ्वी के पशु का हिलाया जाना है, और जब 9/11 आया तब सिस्टर व्हाइट ने ये पहचाना कि प्रभु पृथ्वी को अत्यंत भयानक रीति से हिलाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मुहरबंदी के आरंभ में और उसके अंत में पृथ्वी का पशु हिलाया जाता है, इस प्रकार वो बड़ा भूकंप है।
मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने कहा है जब मैं वहाँ एक के ऊपर एक मंजिल उठती हुई उन विशाल इमारतों को देख रही थी, कितने भयानक दृश्य घटित होंगे जब प्रभु पृथ्वी को भयंकर रीति से कंपाने के लिए उठ खड़ा होगा। तब प्रकाशित वाक्य 18:1-3 के वचन पूरे होंगे। रिव्यू एंड हेरल्ड, 5 जुलाई 1906।
जब प्रभु के प्रबंधात्मक कार्य में परिवर्तन होता है तब वो उठ खड़ा होता है, जैसा कि उस समय हुआ जब स्तिफनुस पर पथराव किया गया और 22 अक्टूबर 1844 को जब मृतकों का न्याय आरंभ हुआ। जब 9 अक्टूबर को जीवितों का न्याय आरंभ हुआ तब प्रभु फिर उठ खड़ा हुआ और तब उसने पृथ्वी के पशु को हिला दिया, जैसा कि वो 144,000 की मुहरबंदी के अंत में करेगा, जब वो अपने प्रबंधात्मक कार्य को अपनी कलीसिया से हटाकर अपने उस दूसरे झुंड की ओर फेर देगा जो अब भी बाबुल में है।
भाई डैनियल ने जो खोजा है वो पहली हाय की वे विशेषताएं हैं जो अध्याय 11 के महाभूकंप की साक्षी के साथ इतिहास और उन अग्रदूतों की उस ऐतिहासिक समझ के अनुरूप हैं जिसके द्वारा पहली हाय की पूर्ति हुई।
और 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी
और मैंने एक तारे को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और उस कुंड में से बड़े भट्ठे के धुएं के समान धुआं उठा और उस कुंड के धुएं के कारण सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए और उस धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर निकली और उन्हें ऐसी शक्ति दी गई जैसी पृथ्वी के बिच्छुओं को शक्ति होती है और उन्हें ये आज्ञा दी गई
कि वे न तो पृथ्वी की घास को, न किसी हरी वस्तु को और न किसी वृक्ष को हानि पहुंचाएं, पर केवल उन मनुष्यों को जिनके माथों पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 9:1-4।
अग्रदूतों ने इन पदों को उस इतिहास पर ठीक ही लागू किया जो मोहम्मद के उदय का परिचायक था। उनका जन्म 570 में हुआ। उन्होंने 606 में कबीलों को एकीकृत किया, 610 में अपनी पहली प्रकाशना प्राप्त की, 627 में मदीना की ओर प्रवास किया, 624 में अपना युद्ध आरंभ किया और 732 में उनकी मृत्यु हुई। अथाह कुंड भविष्यवाणी के अनुसार शैतान की एक नई अभिव्यक्ति का प्रतीक है, परंतु मोहम्मद का उदय अरब में हुआ जो अपने विशाल मरुस्थलों के कारण अथाह कुंड के नाम से भी जाना जाता है।
मोहम्मद 106 में भविष्यद्वाणी करने वाला राजा बना, अथवा जैसा कि उसे कहा गया, विश्वसनीय व्यक्ति, जब उसने विभिन्न गोत्रों के बीच उस विवाद का समाधान किया जो इस दुविधा में थे कि काबा के काले पत्थर की आधारशिला को पुनः स्थापित करने की अनुमति किसे दी जानी चाहिए। काबा एक घनाकार भवन है, इसी कारण इसका नाम काबा है, जिसका अरबी में अर्थ घन होता है, जो सऊदी अरब में मक्का की महान मस्जिद के केंद्र में स्थित है। ये लगभग 43 फुट ऊंचा, 11 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा है और ग्रेनाइट तथा संगमरमर से निर्मित है, जिस पर काले रेशम और सूती वस्त्र का आवरण चढ़ा हुआ है। काबा मोहम्मद से बहुत पहले से अस्तित्व में था और इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे मूलतः इब्राहिम और उसके पुत्र इस्माइल ने एक ईश्वर अल्लाह की उपासना के घर के रूप में बनाया था। शताब्दियों के दौरान ये मूर्तियों से भर गया और अरब गोत्रों द्वारा एक मूर्ति पूजक देवालय के रूप में उपयोग किया जाने लगा।
काबा इस्लामी संसार का आध्यात्मिक केंद्र है, एक सरल प्राचीन भवन जो एकेश्वरवाद, एकता तथा अब्राहमी विश्वास और इस्लाम के बीच संबंध का प्रतीक है। मुसलमान इसे शाब्दिक अर्थ में ईश्वर का घर नहीं मानते, बल्कि उपासना के लिए ईश्वरीय रूप से नियुक्त एक केंद्र बिंदु मानते हैं। जिस काल में काबा ध्वस्त हो चुका था और फिर उसका पुनर्निर्माण किया गया, उस दौरान मोहम्मद के कार्यों से ही उनके नेतृत्व का आरंभ हुआ।
अचानक आई बाढ़ ने काबा को क्षतिग्रस्त कर दिया और कुरैश गोत्र ने उसका पुनर्निर्माण किया। जब काला पत्थर हजर अल अस्वद को उसके कोने में पुनः स्थापित करने का समय आया, तब विभिन्न कुलों के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि ये सम्मान किसे प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने सहमति की कि जो अगला व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश करेगा वही निर्णय करेगा। मोहम्मद वहां आए और उन्होंने बुद्धिमानी से उस विवाद का निपटारा किया। उन्होंने काले पत्थर को एक कपड़े पर रखा, प्रत्येक कुल के एक प्रतिनिधि से उसे मिलकर उठवाया, सबको साथ लेकर उसे वहां तक पहुंचवाया और फिर स्वयं उसे उसके स्थान पर स्थापित किया। इस घटना के कारण उन्हें मक्का के लोगों के बीच बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और अल अमीन, विश्वसनीय की उपाधि मिली। ये भविष्यद्वक्ता पूर्व की प्रमुख घटनाओं में से एक है जिसे अनेक कालक्रमों में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। काला पत्थर वो आधारशिला थी जिसे मोहम्मद ने स्थापित किया, जो इस्लाम पर भविष्य सूचक राजा है। काली आधारशिला मसीह, सच्ची आधारशिला की एक प्रत्यक्ष जालसाजी है, और मूर्तियों के प्रवेश के वर्षों के बाद काबा के भवन का भ्रष्ट हो जाना भी मोहम्मद द्वारा ही सुलझाया गया।
कुरैश द्वारा हुदैबिया की संधि तोड़ देने के बाद मोहम्मद लगभग 10,000 मुसलमानों की सेना के साथ मक्का की ओर बढ़े। नगर ने बहुत ही अल्प युद्ध के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। तब मोहम्मद काबा में प्रवेश किए उसके भीतर स्थित 360 मूर्तियों को नष्ट कर दिया और उस पवित्र स्थल को एकमात्र परमेश्वर अल्लाह की उपासना के लिए पुनः समर्पित किया। इस प्रकार इस्लाम के राजा मोहम्मद ने आधारशिला रखी और उन्होंने मंदिर को मूर्ति पूजा से शुद्ध किया।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 शक्तियां हैं जो अथाह कुंड से निकलती हैं, और उन तीनों में से प्रत्येक एक कूट मसीह का प्रतिनिधित्व करती है। शैतान अर्थात अजगर परम प्रधान के समान होना चाहता है, उसकी राजगद्दी और उसकी कलीसिया पर विराजमान होकर।
हे भोर के पुत्र, हे लूसीफर, तू स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को निर्बल करता था, कैसे भूमि पर काट गिराया गया? क्योंकि तूने अपने मन में कहा था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागण से भी ऊपर ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोरियों में सभा के पर्वत पर भी विराजमान होऊंगा, मैं मेघों की ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, तो भी तू अधोलोक में गड्ढे की गहराइयों में उतारा जाएगा। यशाया 14:12।
नास्तिकता का अजगर प्रकाशित वाक्य 11 में अथाह कुंड से आया, और कैथोलिक वाद का पशु उस समय अथाह कुंड से ऊपर चढ़ता है जब उसका घातक घाव चंगा हो जाता है।
जो पशु तूने देखा वो था और अब नहीं है, और अथाह कुंड में से चढ़कर विनाश में जाएगा, और पृथ्वी पर रहने वाले वे लोग जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पशु को देखकर जो था और नहीं है तो भी है आश्चर्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 17:8।
कैथोलिक वाद का पशु रविवार के विधान के समय पृथ्वी के सिंहासन पर आरोहित होता है जब त्रिविध संघ स्थापित किया जाता है। अजगर के समान कैथोलिक वाद अपने को परमेश्वर होने का दावा करता है, जैसा कि पौलुस ने अत्यंत उपयुक्त रीति से पहचाना।
कोई तुम्हें किसी रीति से धोखा न दे,
क्योंकि वो दिन तब तक न आएगा जब तक पहले धर्म त्याग न हो ले और वो पाप का मनुष्य अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए जो हर उस वस्तु का विरोध करता है और अपने आप को उस सबसे ऊपर उठाता है जो परमेश्वर कहलाती है या जिसकी उपासना की जाती है, यहाँ तक कि वो अपने आप को परमेश्वर ठहराकर परमेश्वर के मंदिर में बैठता है और अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। 2 थिसलुनीकियों 2:3-4।
अजगर के समान कैथोलिक वाद का पशु मसीह विरोधी है। दोनों अपने को परमेश्वर होने का दावा करते हैं, और दोनों का अंतिम विनाश उनकी बाइबिलीय गवाही के साथ संबद्ध है, क्योंकि अजगर अधोलोक में गिरा दिया जाता है और पशु विनाश का पुत्र है, विनाश अर्थात अंतिम नाश।
स्वर्ग में उसने जो विद्रोह आरंभ किया था उसे पूरा करने के लिए मसीह विरोधी का संकल्प अवज्ञा की संतानों में कार्य करता रहेगा। टेस्टिमोनीज खंड 9:230। रोम के पोप के द्वारा पृथ्वी पर वही कार्य चलाया गया है जो अंधकार के प्रधान के निष्कासन से पूर्व स्वर्गीय सभाओं में चलाया गया था। शैतान ने स्वर्ग में परमेश्वर की व्यवस्था को सुधारने और अपनी ओर से उसमें संशोधन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। उसने अपने सृष्टिकर्ता के निर्णय से ऊपर अपने ही निर्णय को ऊंचा किया और यहोवा की इच्छा से ऊपर अपनी इच्छा को रखा, और इस प्रकार वस्तुतः ये घोषित किया कि परमेश्वर भूल करने योग्य है। पोप भी इसी मार्ग पर चलता है और अपने लिए अचूकता का दावा करते हुए परमेश्वर की व्यवस्था को अपने विचारों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता है, ये समझते हुए कि वो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु की विधियों और आज्ञाओं में जो भूले उसे दिखाई देती हैं उन्हें सुधार सकता है। वो वस्तुतः संसार से कहता है, मैं तुम्हें यहोवा की व्यवस्थाओं से उत्तम व्यवस्थाएं दूंगा। ये स्वर्ग के परमेश्वर के लिए कितना बड़ा अपमान है। Signs of the Times, November 19, 1894।
7वीं शताब्दी के इतिहास में मोहम्मद द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया इस्लाम भी उस समय अथाह कुंड से निकला जब मोहम्मद को दी गई कुंजी घुमाई गई। जब उस कुंड को खोला गया तब उसमें से धुआं निकला जिसने सूर्य और आकाश को अंधकारमय कर दिया। अग्रदूतों ने ठीक ही पहचाना कि वो कुंजी जिसने उस कुंड को खोला नीनवे की लड़ाई थी।
जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के प्रथम 3 पदों के निकट भविष्यवाणी के त्रिविध अनुप्रयोग के संदर्भ में अग्रदूतों की समझ के आधार पर पहुँचते हैं, तब हम पाते हैं कि उन पदों की वे भविष्य सूचक विशेषताएं जो पहली विपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं उस तीसरी विपत्ति की भविष्य सूचक विशेषताओं का प्रतिरूप प्रस्तुत करती है जो बड़े भूकंप के समय शीघ्र आती है। रविवार का विधान नीनवे की लड़ाई के द्वारा निरूपित किया गया है।
पीटर नैशविल पर अग्निगोलों की झूठी भविष्यवाणी को सुधारने के लिए उत्तरदायी है, और वो ये पहचानता है कि नैशविल पर अग्निगोलों के संबंध में एलन व्हाइट की चेतावनी का सही अनुप्रयोग मूर्ति पूजा को लगभग पूर्णतः समर्पित हजारों नगरों के विनाश के आरंभ को चिह्नित करता है।
नैशविल की अग्निगोलाएं नगरों पर विनाश के एक काल के आरंभ को चिह्नित करती हैं, और वे लघु मध्यरात्रि के पुकार संदेश की उद्घोषणा के आरंभ को भी चिह्नित करती है। वो संदेश इस्लाम की ओर से एक अप्रत्याशित आक्रमण के साथ आरंभ होता है, और वो काल बड़े भूकंप के समय इस्लाम की ओर से एक अप्रत्याशित आक्रमण के साथ समाप्त होता है। मध्यरात्रि की पुकार की उद्घोषणा का ये काल 144,000 के मुहरबंदी के समय के अंत को चिन्हित करता है जो 9:11 को इस्लाम के अप्रत्याशित आक्रमण के साथ आरंभ हुआ था।
तब 144,000 की मुहरबंदी बिलाम और गदही की रेखा के अनुरूप आरंभ हुई, जहां तीन प्रहार हैं जो संडे लॉ पर जाकर परिपूर्ण होते हैं, परंतु जहां दूसरा अप्रत्याशित आक्रमण 7 अक्टूबर 2023 को प्राचीन महिमामय देश पर होने वाले आक्रमण को और फिर नैशविल के अग्निगोलों को सम्मिलित करता है। सभी रेखाएं सहमत हैं और पतरस समझता है कि इन सत्यों का उन्मोचन, जिन्हें बिखरे हुए रत्नों को बटोरकर रत्न पेटिका में डालने वाले धूल झाड़ने वाले पुरुष के रूप में निरूपित किया गया है, यहूदा के गोत्र के सिंह का कार्य है।
यहूदा का सिंह नैशविल के लिए पतरस के संशोधित संदेश की पहचान 144,000 के मुद्रांकन की अंतिम अवधि में घटित होने वाली घटना के रूप में करता है, जिसका प्रतिनिधित्व दानियेल 11 के पद 40 के गुप्त इतिहास में किया गया है और अधिक विशेष रूप से उसी अध्याय के पद 11 से 15 में निरूपित उस गुप्त इतिहास के भाग में। उन पदों में राफिया की लड़ाई और पानियम की लड़ाई पद 16 के रविवार की व्यवस्था तक ले जाती हैं, जिसका प्रतिनिधित्व एक्टियम की लड़ाई द्वारा किया गया है। जब रविवार की व्यवस्था पर पानियम की लड़ाई एक्टियम की लड़ाई से जुड़ती है, तब नीनवे की लड़ाई भी पुनरावृत होती है।
इस्लाम के राजा मोहम्मद को दी गई कुंजी, जिसका नाम न केवल इस्लाम का स्वरूप है वरन उस विनाश स्थल का भी सूचक है जो नीनवे की लड़ाई द्वारा चिह्नित है। उस राजा का नाम इब्रानी भाषा में अबद्दोन है और यूनानी भाषा में उसका नाम अपुल्लेओन है। यूनानी और इब्रानी पुराना और नया नियम दोनों पर बल देते हैं और हमें ये शिक्षा देते हैं कि अबद्दोन का अर्थ है विनाश का स्थान और अपुल्लेओन का अर्थ है विनाशक। प्रकाशित वाक्य 9 के 11 पद में इस्लाम पर जो राजा है वो मोहम्मद है, परंतु वो अथाह कुंड का दूत भी है, अर्थात शैतान। जैसे पृथ्वी पर पोप शैतान के दाहिने हाथ के मनुष्य के रूप में मसीह विरोधी है, वैसे ही मोहम्मद भी अथाह कुंड के दूत अर्थात शैतान के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से नियंत्रित है।
रविवार के विधान के समय त्रिविध संघ संसार पर बलपूर्वक थोपा जाता है और वो घातक घाव जो 1798 में पोप तंत्र को दिया गया था और इस प्रकार अंधकार युग की समाप्ति को चिह्नित करता था, चंगा हो जाता है। जब वो घातक घाव चंगा हो जाता है, तब अंधकार युग की दूसरी अवधि आ पहुंचती है और उस बड़े भूकंप में जो रविवार का विधान है इस्लाम कुंजी को घुमाता है और भट्टी के धुएं के समान धुआं सूर्य और तारों को ढांप लेता है, क्योंकि अंधकार लौट आता है। नीनवे की लड़ाई रविवार के विधान पर पुनः दोहराई जाती है, क्योंकि वही वो कुंजी है जो अंधकार की दूसरी अवधि को ले आती है। वहां राष्ट्रीय धर्म त्याग के पीछे राष्ट्रीय विनाश आता है। वहां सक्रिय निरंकुशता पूर्ण प्रभुत्व रखती है, क्योंकि इस्लाम का वो धुआं जो नीनवे की लड़ाई में सूर्य और तारों को अंधकारमय करता है, जलती हुई भट्टी के समान है। जलती हुई भट्टी परमेश्वर की अब्राहम के साथ की गई वाचा का एक अंग थी।
और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और अंधकार छा गया, तो देखो एक धुआं देता हुआ भट्ठा और एक जलता हुआ दीपक उन टुकड़ों के बीच से होकर निकला। उत्पत्ति 15:17।
धुआं उगलने वाली भट्ठी जो अब्राम की वाचा बलियों के बीच से होकर गुजरी ने 13वें पद के उक्त अंश में चित्रित मिस्र की दास्ता को सूचित किया।
और उसने अब्राम से कहा, निश्चय जान ले कि तेरी संतान ऐसी भूमि में परदेशी होगी जो उनकी नहीं है, और वे उनकी दास्ता करेंगी और वे उन्हें 400 वर्ष तक दुख देंगे। उत्पत्ति 15:13।
जलती हुई भट्ठी, जैसे कि दानियेल के 3 अध्याय में नबुकदनेस्सर की भट्ठी बंधन और दासत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि शद्रक मेशक और अबेदनगो की दशा थी।
परंतु जैसे अपनी नियत कक्षा के विशाल मार्ग में नक्षत्र न तो शीघ्रता जानते हैं और न विलंब, वैसे ही परमेश्वर के उद्देश्यों में न कोई हड़बड़ी होती है और न कोई देरी। घोर अंधकार और धुमरायमान भट्ठी के प्रतीकों के द्वारा परमेश्वर ने इब्राहिम पर मिस्र में इसराइल की दास्ता प्रकट की थी और ये घोषित किया था कि उनके परदेशवासी रहने का समय 400 वर्ष होगा, और उसके पश्चात उसने कहा वे बहुत सी संपत्ति लेकर निकलेंगे। उत्पत्ति 15:14। द डिजायर ऑफ एजेस 23।
परंतु यहोवा ने तुम्हें लिया है और लोहे की भट्ठी अर्थात मिस्र में से निकाल लाया है, ताकि तुम उसके निज भाग की प्रजा ठहरो, जैसा कि आज के दिन हो। व्यवस्था विवरण 4:20।
जब नीनवे की लड़ाई की कुंजी घुमाई जाती है, तब सूर्य और चंद्रमा को अंधकारमय कर देने वाला धुआं
उस सताव की पहचान कराता है जो रविवार के कानून के समय से गंभीर रूप से आरंभ होता है। तब अंधकार युगों का सताव फिर से दोहराया जाता है। अग्रदूतों ने ठीक ही पहचाना कि नीनवे की लड़ाई वो कुंजी थी जिसने 756 में इस्लाम को पहले हाय के रूप में भविष्यद्वाणी के इतिहास में प्रवेश कराया। ये लड़ाई रोम और फारस के बीच थी और ये रोम की विजय का प्रतीक थी, परंतु ये वो थी जिसे पिर्रस विजय कहा जाता है, ऐसी विजय जो वास्तव में विजेता के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। ये वाक्यांश एपिरुस के राजा पिर्रस की एक विजय से उत्पन्न हुआ है। रोमियों के विरुद्ध दो लड़ाइयों 280 ईसा पूर्व में हेराक्लिया और 277 ईसा पूर्व में अस्कुलम के बाद उसने रोमी सेना को पराजित तो किया, पर अपनी ही सेना का एक बहुत बड़ा भाग खो दिया। किंवदंती के अनुसार तब उसने कहा, ऐसी एक और विजय और हम नष्ट हो जाएंगे।
निनवेह का युद्ध रोम के लिए एक रणनीतिक विजय था, परंतु इसके समाप्त होने पर न तो रोम और न ही फारस में उसके बाद इस्लाम के प्रबल आक्रमण का प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने की शक्ति रही। निनवेह के युद्ध की आधुनिक पूर्ति में फारस संयुक्त राज्य अमेरिका है और रोम पोप तंत्र है। दो सींगों वाली शक्ति के रूप में मादे फारस संयुक्त राज्य अमेरिका की दो सींगों वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। रविवार व्यवस्था के समय संयुक्त राज्य अमेरिका केवल एक सींग रह जाता है, क्योंकि रविवार व्यवस्था तक पहुँचते पहुँचते पशु की मूरत निर्मित हो चुकी होती है और उस निर्माण का तात्पर्य दोनों सींगों को एक में संयोजित कर देना है। दानियेल 8 में मादे फारसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सींग हैं और फारसी सींग बाद में उठा।
तब मैंने अपनी आंखें उठाकर देखा और देखो, नदी के सामने एक मेढ़ा खड़ा था जिसके दो सींग थे और वे दोनों सींग ऊंचे थे, परंतु एक दूसरे से अधिक ऊंचा था और जो अधिक ऊंचा था वो पीछे उगा। दानियेल 8:3।
संयुक्त राज्य अमेरिका के रिपब्लिकनवाद और प्रोटेस्टेंटवाद के दो सींग तब एक हो जाते हैं जब कलीसिया और राज्य मिलकर पशु की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। ये गठन तब पूर्णतः परिपूर्ण हो जाता है जब रविवार के कानून पर पशु की छाप लागू कराई जाती है। ये रविवार के कानून के समय संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान केवल फारस के रूप में करता है। फारस नीनवे के युद्ध में रोम द्वारा पराजित हुआ था। रोम ने फारस को किस प्रकार पराजित किया, ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रोमी सम्राट हेराक्लियस की युद्ध चालों का विशेष स्थान था।
सरल शब्दों में कहे तो हेराक्लियस ने सीधे अग्रसर होने वाले आक्रमण के बजाय एक आकस्मिक आक्रमण को अंजाम दिया। इस आकस्मिकता को साधने के उसके प्रयास इतिहास में दर्ज हैं। इस आकस्मिकता में उसका शीतकाल में आक्रमण करने का निर्णय भी सम्मिलित था, जो उन ऐतिहासिक कालों में असामान्य था। परंतु बात यही तक सीमित नहीं थी। हेराक्लियस ने सितंबर 136 के मध्य में उत्तर से आर्मेनियाई उच्च भूमियों से अपना आक्रमण आरंभ किया। अपेक्षित मार्ग अपनाते हुए सीधे दक्षिण की ओर फारसी राजधानी क्रेसिफोन की दिशा में बढ़ने के बजाय उसने एक व्यापक चाप बनाया और सीमा प्रदेशों के साथ साथ दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ा, लगभग आधुनिक तुर्की ईरान सीमा के क्षेत्र में। फिर वो दक्षिण और पश्चिम की ओर मुड़ा और 1 दिसंबर 136 को ग्रेट जाब नदी को पार कर गया। इससे उसकी सेना नीनवे पठार टिग्रिस नदी के पूर्वी तट पर प्राचीन नीनवे के अवशेषों के निकट पहुंच गई। फारसी सेनाओं की तुलना में ये गमन दक्षिण से उत्तर की ओर था, अर्थात ठीक उसके विपरीत जिसकी फारसियों ने अपेक्षा की थी। वे ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो क्टेसिफोन की ओर दक्षिण की दिशा में अपना दबाव बनाए रखेगा। इसने फारसी सेनानायक रहजाद को चकित कर दिया और उसे हेराक्लियस का पीछा प्रतिकूल भूभाग में करने के लिए विवश किया। इससे रोमनों को नीनवे के निकट मैदानों में युद्धभूमि चुनने का अवसर मिला। इस युद्ध कौशल ने रोमनों को फारसी सेनाओं के बीच फंसने से बचाया और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पलायन का मार्ग भी प्रदान किया। युद्ध के दिन के कोहरे और वास्तविक युद्ध के दौरान प्रयुक्त छलपूर्वक पीछे हटने की युक्ति के साथ मिलकर आकस्मिकता की अनेक परतें उपस्थित थीं। शीतकाल में किया गया ये साहसिक आक्रमण और फारसी भूभाग के भीतर गहराई तक पहुंचने वाला ये पार्श्वगत मार्ग हेराक्लियस की महानतम सैन्य उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इसने फारसी आत्मविश्वास को चूर चूर करने में सहायता की
और दीर्घकालिक युद्ध में अंततः रोमी विजय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
निनेवे की उस लड़ाई में, जो प्रातःकाल से लेकर 11वें घंटे तक अत्यंत भीषणता से लड़ी गई, फारसियों से 28 ध्वज, उनके अतिरिक्त जो टूट गए या फट गए हों, छीन लिए गए। उनकी सेना का अधिकांश भाग टुकड़े टुकड़े कर डाला गया और विजेताओं रोमियो ने अपनी हानि को छिपाते हुए रात्रि रणभूमि पर ही बिताई। अश्शूर के नगर और राजमहल पहली बार रोमियो के लिए खोल दिए गए। रोमी सम्राट उन विजयों के द्वारा सुदृढ़ नहीं हुआ जिन्हें उसने प्राप्त किया था, और उसी समय तथा उन्हीं साधनों के द्वारा अरब से सारासीनों की भीड़ के लिए एक मार्ग तैयार किया गया। उसी प्रदेश से निकली टिड्डियों के समान, जो अपने मार्ग में अंधकारमय और भ्रमकारी मुहम्मदी मत का प्रसार करते हुए शीघ्र ही फारसी और रोमी दोनों साम्राज्यों पर छा गए। इस तथ्य का इससे अधिक पूर्ण उदाहरण अपेक्षित नहीं हो सकता जितना कि गिबन के उस अध्याय के समापन शब्दों में प्रस्तुत किया गया है जिससे पूर्ववर्ती उद्धरण लिए गए हैं। यद्यपि हेराक्लियोस के ध्वज के अधीन एक विजयी सेना संगठित की गई थी, तथापि वो अप्राकृतिक प्रयास उनकी शक्ति का उपयोग करने के बजाय मानो उसे क्षीण ही कर गया। जब सम्राट कॉन्स्टेंटिनोपल या यरूशलेम में विजय उल्लास कर रहा था, तब सीरिया की सीमाओं पर स्थित एक अपरिचित नगर को सारासेनों ने लूट लिया और उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ने वाली कुछ टुकड़ियों को उन्होंने काट डाला। यह एक साधारण और तुच्छ घटना होती यदि वो किसी महान क्रांति की पूर्वपीठिका न होती। ये लुटेरे मोहम्मद के प्रेरित थे। उनका उन्मत्त पराक्रम मरुभूमि से निकलकर प्रकट हुआ था, और उसके शासन के अंतिम 8 वर्षों में हेराक्लियस ने अरबों के हाथों वही प्रांत खो दिए जिन्हें उसने फारसियों से छुड़ाया था। कपट और उन्माद की वो आत्मा, जिसका निवास स्वर्गों में नहीं है, पृथ्वी पर छोड़ दी गई। अथाह कुंड को खोलने के लिए केवल एक कुंजी की आवश्यकता थी, और वो कुंजी खुसरो का पतन था। उसने मक्का के एक अज्ञात नागरिक के पत्र को तिरस्कारपूर्वक फाड़ डाला था, परंतु जब वो अपनी महिमा की ज्वाला से उतरकर उस अंधकार के गढ़ में जा पड़ा जिसमें कोई आँख प्रवेश नहीं कर सकती थी, तब मोहम्मद के नाम के सामने खुसरो का नाम सहसा विस्मृति में चला जाना था, और अर्धचंद्र मानो अपने उदय की प्रतीक्षा केवल तारे के पतन तक कर रहा था। खुसरो अपनी पूर्ण पराजय और साम्राज्य हानि के पश्चात सन 706 में हत्या कर दिया गया, और सन 736 अरब की विजय तथा रोमी साम्राज्य के विरुद्ध मुहम्मदियों के प्रथम युद्ध के द्वारा चिह्नित है। और 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, वो पृथ्वी पर गिरा। जब रोमी साम्राज्य की शक्ति चुक गई थी और पूरब का महान राजा अपने अंधकार के गढ़ में मृत पड़ा था, तब सीरिया की सीमाओं पर स्थित एक अज्ञात नगर की लूट एक महान क्रांति की प्रस्तावना थी। वे लुटेरे मोहम्मद के प्रेरित थे, और उनका उन्मत्त पराक्रम मरुभूमि से निकलकर प्रकट हुआ। उरिया स्मिथ, डैनियल एंड द रेवलेशन, 495-497।
निनेवे की लड़ाई उस रविवार व्यवस्था के समय आधुनिक रोम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका पर विजय प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु ये एक पायरिक विजय है क्योंकि रविवार व्यवस्था से ही रोम पर क्रमिक न्याय आरंभ हो जाता है।
खुसरो फारसी साम्राज्य का प्रधान था, अतः फारस, जो रविवार के विधान के समय संयुक्त राज्य के पतन का प्रतिनिधित्व करता है, वही वो कुंजी है जो बाइबल भविष्यवाणी के 6ठे राज्य के पतन पर अतल कुंड को खोलती है। ये दानियेल 11 की आयतें 16, 31 और 41 के रविवार विधान का तथा प्रकाशित वाक्य 13:11 का भी प्रतिनिधित्व करता है।
उसी पदों और इतिहास पर अग्रणी स्टेफन हैस्केल की टिप्पणियों पर ध्यान दें।
अरबों अथवा सारासेनों ने पृथ्वी पर कभी कोई प्रभाव नहीं डाला था। राष्ट्रों के इतिहास में मरुभूमि के ये स्वतंत्र पुरुष प्रायः बिना किसी उल्लेख के ही निकल गए थे। मुहम्मदवाद ने बिखरी हुई जातियों को एक किया और उन्हें राष्ट्रों के विजेताओं के रूप में आगे भेजा। सारासेनी शस्त्रबल के साथ जो तीव्र प्रगति हुई, उसका कारण बड़े भाग में रोमियो और आधुनिक फारसी साम्राज्य के प्रधान खोसरोएस के बीच का संघर्ष था। इस संघर्ष का परिणाम उत्तरवर्ती के पतन में हुआ। आधुनिक फारस एक अवरोधक दीवार के समान खड़ा था जो मुहम्मद की शक्ति को रोके हुए थी, परंतु जब वो शक्ति गिर गई तब वो अवरोध दूर हो गया, अथाह कुंड खुल गया और सारासेनों ने संसार को बाढ़ के समान भर दिया। जब अथाह कुंड खोला गया तब उससे धुआं उठा जिसने सूर्य के मुख को ढांप लिया। ये रूपक अत्यंत प्रबल है, जो मोहम्मदवाद के उस अंधकारकारी प्रभाव को प्रकट करता है जब वो पृथ्वी के मुख पर फैल गया। स्टीवन हास्कल, द स्टोरी ऑफ द सीयर ऑफ पैटमॉस, 164-165।
रोम के इतिहास में वो अवरोधक दीवार कलीसिया और राज्य के पृथक्करण की वो दीवार है जो रविवार के विधान पर हटा दी जाती है। नीनवे के युद्ध में फारस पर रोम की पायरिक विजय का एक और स्तर भी है, क्योंकि नीनवे का एक पूर्ववर्ती युद्ध भी था जो एक अल्फा का प्रतिनिधित्व करता है, और 627 का युद्ध ओमेगा का प्रतिनिधित्व करता है। वो युद्ध 612 ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 1200 वर्षों के अंतर पर। उस युद्ध में अश्शूर एक त्रिगुट महासंघ द्वारा पराजित हुआ और उसने अश्शूरी साम्राज्य के अंत को चिह्नित किया।
ए. टी. जोन्स नीनवे की अल्फा लड़ाई पर टिप्पणी करते हैं,
अश्शूर की सरकार के कार्यकलाप बुरे से और भी बुरे होते गए, यहाँ तक कि 6242 ईसा पूर्व में उन्हीं तीन देशों की ओर से एक और महान विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व इस बार स्वयं नबोपोलासर ने किया। ये पूर्णतः सफल रहा। नीनवे को खंडहरों का ढेर बना दिया गया और अश्शूरी साम्राज्य को तीन बड़े भागों में बांट दिया गया। मादय, जिसके अधिकार में उत्तर पूर्व और सुदूर उत्तर रहा, बाबुल, जिसके अधिकार में एलाम तथा फरात और दजला के सभी मैदान और उपत्यकाएं रहीं, और मिस्र, जिसके अधिकार में फरात के पश्चिम का सारा देश रहा। बाबुल और मादय के बीच इस संधि की मुहर ये थी कि मादय के राजा की पुत्री का विवाह नबोपोलासर के पुत्र नबूकदनेस्सर से किया गया। अश्शूर के विरुद्ध इस संधि में अपने भाग का निर्वाह करते हुए ही मिस्र का राजा फिरौन नेको अश्शूर के राजा से लड़ने के लिए फरात के किनारे करकमिश के विरुद्ध चढ़ाई करके गया, जब यहूदा का राजा योशिया उससे युद्ध करने के लिए निकला और मिगिद्दो में मार डाला गया। तब क्योंकि ये समस्त पश्चिमी प्रदेश मिस्र के राजा के अधिकार में था, इसलिए विजय द्वारा प्राप्त अपनी वैध प्रभुता के प्रयोग में उसने योशियाह के पुत्र शल्लूम को यहूदा का राजा होने से हटा दिया और उसके स्थान पर एलियाकीम को यहूदा का राजा ठहराया, उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा और देश पर कर लगा दिया। 1 क्रॉनिकल्स 3:15, 2 किंग्स 23:19।
700 ईसा पूर्व में नीनवे की अल्फा लड़ाई में अश्शूरी साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल की भविष्यवाणी का छठा राज्य रविवार के कानून पर समाप्त होता है। उस युद्ध में विजेता बाबुल, मिस्र और मादी का त्रिगुणी संघ था। उस काल के युद्धों में राजा योशिया मेगिद्दो में मरता है और इस प्रकार आर्मागेदोन का प्रतिरूप ठहरता है। 1637 में नीनवे की ओमेगा लड़ाई में तीसरे हाय का इस्लाम मुक्त कर दिया जाता है, जब संविधान में संरक्षण की दीवार को हटा दिया जाता है, जैसा कि इसका प्रतिरूप था। जैसे हेस्केल ने फारस के विषय में उल्लेख किया कि फारस की पराजय के साथ संरक्षण की अवरोधक दीवार हटा दी गई, मेगिद्दो में राजा योशिया की मृत्यु नीनवे की पहली लड़ाई को अंतिम दिनों की दूसरी लड़ाई होने के रूप में चिह्नित करती है। 1630 में नीनवे की दो लड़ाइयों में से अंतिम, जब कुंजी घुमाई जाती है और अथाह कुंड खोला जाता है, अंतिम दिनों में पहली है, क्योंकि जो पहला है वही अंतिम होगा। अश्शूर और त्रिगुणी संघ के बीच नीनवे की पहली लड़ाई आर्मागेदोन की ओर ले जाती है। दूसरे अंधकार युग की अवधि नीनवे की लड़ाई से आरंभ होती है और नीनवे की लड़ाई पर समाप्त होती है।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के प्रथम हाय अर्थात पांचवी तुरही के तथ्य वे हैं जिन्हें अग्रदूतों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के किसी भी अंश की अपेक्षा सबसे स्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्य माना था। उरियाह स्मिथ इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त करते हैं,
पद 1 और 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। इस तुरही का विवरण प्रस्तुत करने के लिए हम फिर से श्री कीत की रचनाओं का सहारा लेंगे। ये लेखक सत्यतापूर्वक कहता है, सरासेनों और तुर्कों पर पांचवी और छठी तुरहियों अथवा पहली और दूसरी हाय के प्रयोग के संबंध में व्याख्याताओं के बीच शायद ही प्रकाशित वाक्य की किसी अन्य भाग के विषय में इतनी सर्वसम्मति पाई जाती हो। ये इतना स्पष्ट है कि इसका गलत अर्थ समझा जाना शायद ही संभव है। प्रत्येक के लिए केवल एक या दो पद निर्दिष्ट होने के बजाय प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय का समस्त भाग समान अंशों में दोनों के वर्णन में लगा हुआ है। उरियाह स्मिथ, डैनियल एंड द रेवलेशन, 94-95.
पत्रस पानियम में नैशविल के अग्निपिंडों के संदेश को सुधारने की जिम्मेदारी के साथ उपस्थित है और पहली बार ये देखा जाता है कि पहली विपत्ति के तत्व शीघ्र आने वाले रविवार व्यवस्था के तत्वों के साथ पूर्णतः मेल खाते हैं। यहूदा के गोत्र के सिंह ने इस समझ को भविष्यवाणी की अन्य रेखाओं के साथ सामंजस्य में प्रकट किया, जिन्हें वो पहले ही स्थापित कर चुका था। इतिहासकार सच्चो 30 में रोम द्वारा फारसियों पर किए गए आकस्मिक आक्रमण के महत्व की गवाही देंगे और जब वे ऐसा करेंगे तब वे शीतकाल में हेराक्लियस द्वारा फारस के चारों ओर और उसके पीछे की गई चालबाजी को आक्रमण के समय तक छिपे रहने की एक युक्ति के रूप में उल्लेखित करेंगे।
बहन व्हाइट हमें सूचित करती है कि रोम केवल लाभप्रद स्थिति की प्रतीक्षा कर रहा है और तब वो प्रहार करेगी।
परमेश्वर के वचन ने आने वाले संकट के विषय में चेतावनी दी है। यदि इसकी उपेक्षा की जाए तो प्रोटेस्टेंट जगत ये जान सकेगा कि रोम के अभिप्राय वास्तव में क्या हैं, केवल तब जब फंदे से बच निकलने में बहुत देर हो चुकी होगी। वो चुपचाप सामर्थ्य में बढ़ रही है। उसके सिद्धांत विधानसभाओं में, कलीसियाओं में और मनुष्यों के हृदयों में अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। वो अपनी ऊंची और विशाल संरचनाओं का ढेर लगा रही है, जिनके गुप्त आंतरिक स्थलों में उसके पूर्वकालीन उत्पीड़न फिर से दोहराए जाएंगे। वो दबे पाँव और बिना संदेह उत्पन्न किए अपनी शक्तियों को सुदृढ़ कर रही है, ताकि जब उसके प्रहार करने का समय आए तो वो अपने ही उद्देश्यों को आगे बढ़ा सके। उसे केवल लाभप्रद स्थिति चाहिए और ये उसे पहले ही दी जा रही है। हम शीघ्र ही देखेंगे और अनुभव करेंगे कि रोमी तत्व का उद्देश्य क्या है। जो कोई परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा और उसका पालन करेगा, वो इस कारण निंदा और उत्पीड़न का भागी होगा। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 581।
सम्राट हेराक्लियस के समान पोप सत्ता अपनी लक्ष्य पूर्ति की ओर गुप्त रूप से और अप्रत्याशित रीति से बढ़ती रही है। यशायाह अध्याय 23 की पूर्ति में, जहां सूर की वेश्या को बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के इतिहास के लिए भुला दिया जाता है, हेराक्लियस का गुप्त आकस्मिक आक्रमण 1798 से लेकर संडे लॉ तक संसार द्वारा पोप सत्ता को भुला दिए जाने का प्रतीक है। पंक्ति पर पंक्ति पहला हाय तीसरे और अंतिम हाय का प्रतिनिधित्व करता है। पहले हाय में एक उद्घोषणा की जाती है जो इस्लाम के इतिहास तथा 144,000 के मुद्रांकन की अवधि के साथ भी संगत है,
और उन्हें आज्ञा दी गई कि वे न पृथ्वी की घास को, न किसी हरी वस्तु को और न किसी वृक्ष को हानि पहुंचाए, परंतु केवल उन मनुष्यों को जिनके माथों पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें ये दिया गया कि वे उन्हें मारे नहीं परंतु 5 महीने तक उन्हें पीड़ा पहुंचाए, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसी बिच्छू की पीड़ा जब वो किसी मनुष्य को डंक मारता है, और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे परंतु उसे न पाएंगे, और मरने की इच्छा करेंगे और मृत्यु उनसे भाग जाएगी। प्रकाशित वाक्य 9:4-6।
निनेवे के युद्ध में, जो निकट आने वाला रविवार का कानून है, कुंजी घुमाए जाने से पहले ही 144,000 जनों पर पहले से ही मुहर लग चुकी होती है। रविवार के कानून पर नगरों के विनाश को, जिसका आरंभ नैशविल के अग्नि गोले से होता है, 5 महीने की एक अवधि के रूप में दर्शाया गया है, जब युद्ध उग्र होता है और दूसरा पापकीय रक्त स्नान आरंभ किया जाता है, जो 5वीं मुहर में अंधकार युग के शहीदों को दिए गए उत्तर की पूर्ति में होता है।
और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने थामे रखी थी वध किए गए थे, और वे बड़े शब्द से पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु जो पवित्र और सत्य है, तू कब तक पृथ्वी पर रहने वालों पर न्याय करके हमारे लहू का पलटा न लेगा? और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिए गए, और उनसे कहा गया कि वे थोड़े समय और विश्राम करें, जब तक कि उनके संगी सेवक और उनके भाई भी, जो उनकी नाई मारे जाने वाले थे, पूरे न हो ले। प्रकाशित वाक्य 6:9-11।
अंधकार युगों के शहीद पहला समूह है, जो रविवार विधि के संकट के दौरान आधुनिक रोम के शहीदों का प्रतिरूप ठहरते हैं। उस संकट के आने से पहले 144,000 पर मुहर की जाती है, और वो मुहरबंदी की प्रक्रिया 9:11 पर तीसरे हाय के इस्लाम के आगमन तथा पछुआ वर्षा के छिड़काव के साथ आरंभ हुई, जब प्रथम अंधकार युगों के शहीदों ने पूछा कि पोप तंत्र का न्याय कब किया जाएगा, तब उन्हें बताया गया कि जब अंधकार युगों की पुनरावृत्ति होगी तब शहीदों का एक दूसरा समूह होगा, और वही वो समय है जब नीनवे के युद्ध की कुंजी शीघ्र आने वाली रविवार विधि पर पूर्ण होती है। शहीदों का दूसरा समूह पूर्ण होने से पहले 144,000 पर मुहर की जाती है, और 9/11 पर आरंभ हुई उस मुहरबंदी की अवधि की पहचान पांचवीं मुहर में की गई है, क्योंकि वहां प्रस्तुत संवाद प्रकाशित वाक्य अध्याय 6:9-11 में पाया जाता है। इस प्रकार 9/11 के साथ मुहरबंदी के आरंभ और अंत को चिन्हित करते हुए उसका अंत इस्लाम के विनाश का परिचय कराता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 9:11 में प्रतिपादित है, और जो मुहर बंद किए गए हैं वे दानियेल के उस अनुभव को पूरा कर चुके होंगे जिसका निरूपण दानियेल 9:11 में किया गया है।
हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।